नमस्कार भारत, 28 अप्रैल दिन शुक्रवार, मैं हूँ आत्सल्य राय। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को रूस से मिले धन की जांच में जुटा पेंटागन।
जनरल फ्लिन्स अटॉर्नीज सेज ही डिस्कस्ड हिज ट्रिप टू मॉस्को।
अमरीका में H-1B वीजा नियमों में बदलाव पर भारतीय आईटी कंपनियों को क्यों झेलनी पड़ रही है आलोचना।
Every time it happens before election, this time because Trump has won the election on that mandate to create jobs locally.
छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले के निवासी किन दिक्कतों से हैं रूबरू?
जैसे शादी ब्याह करने की बात, अगर रिश्ते करने के जाते थे तो सुकमा के नाम से कॉप से लोग देना नहीं चाहते थे।
और सुनवाएंगे ब्रजेश उपाध्याय की वाशिंगटन डायरी भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। अमरीकी रक्षा विभाग राष्ट्रपति ट्रंप के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जनरल माइकल फ्लिन के रूस से पैसे लेने की जांच कर रहा है। माइकल फ्लिन को रूस से कथित नजदीकी के आरोपों के 24 दिन के कार्यकाल के बाद ही अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। ये बात भी सामने आई थी कि उन्होंने रूसी राजदूत के साथ अपने संबंधों के बारे में उपराष्ट्रपति माइक पेंस को गुमराह किया था। मैसेडोनिया की पुलिस ने संसद के अंदर बिगड़े माहौल को शांत करने के लिए स्टन ग्रेनेडों का इस्तेमाल किया है। अल्बानिया मूल के सांसद को सदन का अध्यक्ष चुने जाने के लिए हुए मतदान के बाद संसद के भीतर ही झड़पें शुरू हो गई थीं। तलत जाफरी को पद के लिए चुने जाने के बाद प्रदर्शनकारी सदन में ही घुस आए थे। प्रदर्शनकारियों को डर है कि देश में अल्बानियाई मूल के लोगों का स्तर सुधरने से मैसेडोनिया की एकता को खतरा होगा। सदन में हुए हंगामे में द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जोरान जाएव घायल हो गए हैं। सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीर में उनके सिर से खून निकलता दिख रहा है। बाद में पुलिस ने सांसदों को सदन से सुरक्षित निकाला। इस दौरान माहौल बेहद खराब रहा। ये थी मैसेडोनिया की संसद से कुछ आवाजें। जर्मनी की संसद के निचले सदन ने सार्वजनिक कर्मचारियों की ड्यूटी पर बुर्का पहनकर काम करने पर रोक लगाने के समर्थन में मतदान किया है। अब इस विधेयक को मंजूरी के लिए उच्च सदन में पेश किया जाएगा। जर्मनी के गृह मंत्री थॉमस डे मेजिरे ने कहा है कि ये नया प्रावधान बताता है कि जर्मनी दूसरी संस्कृतियों के प्रति जर्मनी में कितनी सहिष्णुता है। दिसंबर में चांसलर एंगेला मेयरकल ने कहा था कि वो चाहती हैं कि पूरा चेहरा ढकने पर जहां मुमकिन हो वहां कानूनी पाबंदी लगाई जाए। जर्मनी की कट्टरपंथी पार्टियां सार्वजनिक स्थानों पर बुर्के पर पूर्ण प्रतिबंधों की मांग कर रही थीं। पड़ोसी देश फ्रांस में बुर्के पर पूरी तरह पाबंदी है। बीते 2 साल में 10 लाख से अधिक प्रवासी, जिनमें अधिकतर मध्य पूर्व से हैं, जर्मनी पहुंचे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं देने वाली राहत संस्था मेडिसिन सान फ्रंटिये यानी MSF ने दक्षिणी सूडान के संघर्ष में शामिल सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने और जरूरी सेवाओं तक पहुंच मुहैया कराने की अपील की है। MSF के मुताबिक उत्तर पश्चिमी शहर कोडोक से करीब 25,000 लोग जान बचाकर भागे हैं। यहां 3 दिनों से भीषण लड़ाई जारी है। असुरक्षा के कारण राहत सामग्री और स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे समूहों ने नील नदी के पश्चिमी तट पर सेवाएं देनी बंद कर दी हैं। दक्षिणी सूडान में 3 सालों से गृहयुद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से लोग छुपकर रहने पर मजबूर हैं। मेडिसिन सान फ्रंटिये के प्रमुख मार्कस बैचमैन ने बताया,
We have set up an emergency hospital in Abroch.
हमने अबरोच में एक आपात अस्पताल स्थापित किया था और कोडोक में चलित क्लिनिक चलाए थे। आज सुबह हालात बेहद ख़राब होने से पहले तक हम स्वास्थ्य सेवाएं दे पा रहे थे, लेकिन अब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और हमें दुर्भाग्यवश इस क्षेत्र में सभी चिकित्सीय गतिविधियां रोकनी पड़ी हैं। उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को लेकर बढ़ रहे कूटनीतिक दबाव के बीच एक वीडियो जारी किया है, जिसमें अमरीका पर हमला दिखाया गया है। इस वीडियो में व्हाइट हाउस और विमान वाहक पोतों को निशाने पर दिखाया गया है। वीडियो के अंत में अमरीकी राष्ट्रपति कार्यालय को आग की लपटों में दिखाया गया है। फेसबुक का कहना है कि वो सरकारों और अन्य संस्थानों के फेसबुक पर गलत जानकारियों को बढ़ावा देने और जनता की राय को प्रभावित करने से रोकने के लिए सुरक्षा उपाय कर रहा है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत आप सुन रहे हैं रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर भी लाइव। नमस्कार भारत में आज सबसे पहले बात अमेरिका की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर रहे हैं। हम इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले बात ट्रंप के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल फ्लिन की। हम बता दें कि फ्लिन को महज 24 दिन में ही अपना पद छोड़ना पड़ा था। अब अमरीकी रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि वो फ्लिन को रूस की सरकार से जुड़ी कंपनियों से मिली वित्तीय मदद की जांच कर रहा है। पूरा ब्यौरा बता रहे हैं दिलनवाज पाशा।
पेंटागन इस बात की जांच कर रहा है कि माइकल फ्लिन ने विदेशी सरकारों से पैसा लिया था या नहीं। माइकल फ्लिन को 2014 में विदेशी पैसों को लेकर चेतावनी दी गई थी। इससे एक साल पहले ही वो रूसी टीवी पर दिखे थे और दस्तावेजों के मुताबिक उन्हें $45,000 दिए गए थे। यही नहीं, फ्लिन के रूस से संबंधों की जाँच FBI और कांग्रेस की दो समितियां भी कर रही है। फ्लिन के एक अधिवक्ता का कहना है कि पेंटागन को उनके पैसे लेकर भाषण देने के बारे में जानकारी दी गई थी। कांग्रेस की समिति के सदस्य अब ये निर्धारित करना चाहते हैं कि उन्होंने कानून तोड़ा है या नहीं। वाशिंगटन में एक प्रेस वार्ता में समिति में शामिल डेमोक्रेट सांसद एलिजा कमिंग्स ने बताया कि माइकल फ्लिन को चेताया गया था कि पूर्व अनुमति लेना एक कानूनी जरूरत है। उन्होंने कहा,
I'm releasing a letter that was sent directly to General Flynn.
मैं एक पत्र जारी कर रहा हूं जो कि फ्लिन की पूर्व एजेंसी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की ओर से 8 अक्टूबर 2014 को सीधे जनरल फ्लिन को भेजा गया था। इस पत्र में फ्लिन को स्पष्ट चेतावनी दी गई थी कि रिटायरमेंट के बाद संविधान उन्हें बिना पूर्व अनुमति के किसी भी विदेशी सरकार से कोई भी पैसा लेने से प्रतिबंधित करता है। पेंटागन की ओर से जनरल फ्लिन को दी गई चेतावनी बिल्कुल स्पष्ट थी। एलिजा कमिंग्स ने यह भी कहा कि माइकल फ्लिन ने सरकार को ये नहीं बताया था कि वो क्या कर रहे हैं। ये बात सामने आई थी कि उन्होंने रूसी राजदूत सर्गेई किसलाक के साथ अपने वार्तालापों के बारे में उपराष्ट्रपति माइक पेंस को गलत जानकारी दी थी। माइकल फ्लिन पर रूस के करीबी होने के आरोप लगते रहे हैं।
रिपोर्ट सुना रहे थे दिलनवाज पाशा।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 6155, 7995, 9915 और 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
श्रोताओं, आपको बता दें कि अमेरिका H-1B वीजा कार्यक्रम की समीक्षा कर रहा है। सॉफ्टवेयर कंपनियां इस कार्यक्रम के तहत बड़ी संख्या में भारतीय इंजीनियरों को अमेरिका भेजती हैं। इस दौर में TCS और इंफोसिस जैसी भारतीय IT कंपनियों को भी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि भारतीय IT सेक्टर इसे लेकर ज्यादा चिंतित नहीं है, लेकिन क्यों, आइए जानते हैं इमरान कुरैशी की इस रिपोर्ट में।
विदेशों से नौकरियां वापस लाने के वायदे करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा के नियमों में बदलावों पर जोर दिया है। चुनाव प्रचार में भी कई बार उन्होंने विदेशी IT पेशावरों पर निशाना साधा था। H-1B वीजा नियमों में बदलाव से अब अमेरिका जाने वाले भारतीय IT पेशावरों की संख्या कम हो सकती है और पिछले थोड़े दिनों भारत की बड़ी कंपनी TCS और इंफोसिस भी आलोचना का शिकार हुई हैं। लेकिन भारतीय कंपनियों को आलोचना क्यों झेलनी पड़ रही है? हमने यह सवाल इंफोसिस के पूर्व चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या CFO वी बालकृष्णन से पूछा। उन्होंने कहा,
See, every time it happens before elections, this time because Trump has won the election on that mandate to create jobs locally.
इस तरह की आलोचना करना इस समय राष्ट्रपति चुनाव के बाद भी हो रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने नौकरी निर्माण करने के मुद्दे पर चुनाव जीता है, इसीलिए यह विषय चुनाव के बाद भी चल रहा है। ये एक राजनीतिक बयान है जो आर्थिक वास्तविकता से दूर है। अमेरिका में IT पेशावरों की बहुत कमी है और उनको असलियत बहुत जल्द एहसास होगी। ये थे वी बालकृष्णन के शब्द। बालकृष्णन से हाँ में हाँ मिलाते हुए माइंट्री कंसल्टिंग के CEO रॉस्टो रावनन इस विषय को अलग नजरिए से देखते हैं। उन्होंने कहा,
I think the main challenge is from a political perspective, the US is not able to create new jobs.
ये आलोचना इसलिए हो रही है क्योंकि वहाँ बेरोजगारी बहुत है और वहाँ के लोग समझते हैं कि भारतीय IT पेशावरों ने उनकी नौकरी छीन ली है, जो सरासर गलत है। लेकिन भारतीय IT कंपनियों को अपने व्यापार मॉडल को बदलना होगा। हमें ज्यादा काम भारत में ही करवाना पड़ेगा। इसके अलावा जो यूएस जाते हैं उन्हें भी अपना रुख अमेरिका के निवासियों के तरफ बदलना पड़ेगा। ट्रंप के शासन प्रबंध का ये इल्ज़ाम था कि TCS और इन्फोसिस जैसी कंपनियों ने ज़्यादा H1B वीज़ाज लिए हैं। तो क्या यह इल्ज़ाम है या हकीकत? हमने ये सवाल हेड हंटर्स के CEO क्रिस लक्ष्मीकांत से पूछा।
So what they have done is to get one visa, you have to apply for three visas.
हाँ, उनके कहने में सच्चाई है, लेकिन वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये हमारे सबसे बड़े कंपनी हैं। पिछले साल 65,000 H1B वीजास दिए गए और उसमें से भारत को 38,000 वीजा मिले, उसमें से 18,000 TCS और इन्फोसिस जैसे कंपनियों को मिले हैं। लेकिन ये कोई नाजायज तरीकों से तो नहीं मिला है, वो बाकायदा कानूनी तौर से मिला है। ये थे क्रिस लक्ष्मीकांत के शब्द। मतलब ये कि इस तरह की आलोचना का असर कम समय के लिए जरूर पड़ेगा। जैसे पिछले महीने ही भारतीयों ने अमेरिका से करीब 10% कम पैसा भेजा है और आने वाले समय में उतने भारतीय IT पेशावरों को अमेरिका जाने का मौका नहीं मिलेगा जितने पहले जाया करते थे, क्योंकि अमेरिकी कंपनियों को भारत में ही अपना काम करवाना पड़ेगा। हाँ, इसकी वजह से एक और मामले पर असर पड़ सकता है, जो अमेरिका जाने वाला दामाद या जाने वाली बहू की उम्मीद रखते हैं, उनके लिए ऐसा दुल्हा दुल्हन ढूंढने के लिए विकल्पों की कमी हो सकती है। इमरान कुरैशी, BBC बेंगलुरु।
और अब बात छत्तीसगढ़ के सुकमा की। बीते सोमवार को सुकमा में नक्सलियों के हमले के बाद से ज्यादातर चर्चा सुरक्षा के पहलुओं पर हुई है, लेकिन सुरक्षा बलों और नक्सलियों के संघर्ष के बीच फंसे रहने वाले वहां के लोगों की जिंदगी कैसी है, वो किन दिक्कतों का सामना करते हैं? सुकमा के दौरे पर गए BBC संवाददाता सलमान रावी ने स्थानीय लोगों से यही जानने की कोशिश की।
मैं इस वक्त सुकमा की मेन रोड में हूँ। सुकमा, ये नाम ही दहशत और खौफ का है और पिछले कई सालों से सुकमा अभाव में और खौफ के साए में जी रहा है। सुकमा में ना ठहरने की कोई जगह है, ना कनेक्टिविटी है और यहाँ पर आए दिन नक्सली वारदातें, बड़ी बड़ी घटनाएँ घटती हैं। पूरा इलाका कट ऑफ है, ये छोटा सा शहर है, कस्बा है यहाँ पर, और ये कई सालों से इसी तरह से है। यहाँ पर आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए कि क्या सुकमा कभी सुधर पाएगा, हमारे साथ हैं धनीराम बारसे जी जो ज़िला परिषद के सदस्य हैं और बिचेम पोंडी जी हैं जो वकील हैं पेशे से। हमारे साथ आशुतोष सिंह हैं जो व्यवसायी हैं और पोडियम नारायण साहब हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और एक एक्सपर्ट यहाँ पे सबसे पुराने पत्रकार यहाँ के सुकमा के लीलाधर राठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा आप लोगों से, ये जो माहौल है, सुकमा का नाम जो बदनाम है पिछले कई सालों से, सुकमा नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, तो यहाँ लड़कियों की शादियाँ करते हैं लोग अपनी इलाके, यहाँ बेटियाँ देते हैं?
वैसे पहले तो बहुत कुछ ऐसा यहाँ का माहौल जो अति संवेदनशील होने के कारण सभी समाज में ये बातें आती थी कि कई जगह पे जैसे शादी ब्याह करने की बात, अगर रिश्ते करने के लिए जाते थे तो सुकमा के नाम से कॉप से लोग देना नहीं चाहते थे।
ये बताइए आशुतोष जी, आप बिजनेसमैन हैं, यहाँ पर तो बैंकों की पूरी सुविधा होगी, अब कैशलेस ट्रांजैक्शन भी कर रहे होंगे?
कैशलेस सर, सबसे पहले प्रॉब्लम है सर नेटवर्क का, बिना नेटवर्क का कैशलेस कोई काम करना ही है, हमेशा लिंक फैल रहता है, हमारे ग्राहकों और हमारे दुकानदारों दोनों को बहुत प्रॉब्लम रहता है।
क्या लोग सोचते हैं यहाँ के, कैसे रह रहे हैं?
देखिए, यहाँ माहौल दहशत में है, काफ़ी भय में है लोग। गांव के जो लोग हैं वो शहर कस्बों से कटे हैं, कारण ये है कि उनको भौतिक सुविधाओं से बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जैसे कोई आ जाता है तो तथाकथित जो है आत्मसमर्पित लोग नक्सली, वो जो गांव से आता है उनको पकड़ा देते हैं। इस भय से भी गांव के लोग आते नहीं, ये गांव से नहीं जुड़ने के पीछे बहुत बड़ा कारण,
मतलब ये जो गांव है वो शहर से जुड़ नहीं रहे हैं,
नहीं जुड़ रहे हैं, और सरकार भी जो सत्ता सरकार है ये भी अपनी विश्वास समाज के अंदर नहीं जीत पाई है,
सरकार तो, विश्वास नहीं जीत पा रही है शायद। हाँ, यही वजह है कि खबरें नहीं मिल पाती गांव की सरकार तक कि भाई क्या माहौल है, और इंटेलिजेंस का जो फेलियर होता है वो इसीलिए होता है कि कोई संपर्क नहीं हो।
इंटेलिजेंस तो है ही नहीं यहाँ पर, सबसे बड़ी क्या है, विश्वास बड़ी चीज है, वो विश्वास नहीं करता वो कोई बात क्यों बताएगा।
लीलाधर राठी साहब, 18 साल से पत्रकारिता आप यहाँ कर रहे हैं, ये बताइए कि पहले तो दंतेवाड़ा ज़िले का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट के टाइम में एक इंटेग्रेटेड एक्शन प्लान आया जो नक्सल प्रभावित ज़िलों के लिए है, पहले दंतेवाड़ा में रहने के बाद सुकमा को मिलता रहे पैसे, और उसके बाद फिर जो है सुकमा अलग ज़िला बन गया, तो इस मद से हर साल करोड़ों रुपए आते हैं, तो ये दिखता क्यों नहीं?
उसमें एक प्लानिंग थी कि जो सुकमा जिले के जो भी हैवी नक्सल इफेक्टेड जो ब्लॉक्स हैं उनको पैसा देना था, उसके बाद वो हैवी इफेक्टेड जो विलेजेस हैं खासतौर पर जगरुंडा चिंतलनार कांके अपना गुलाबफली का एरिया है वहाँ खर्च करना था। लेकिन मैंने अपनी खुद की एक रिपोर्टिंग में 2015 मैंने एक रिपोर्टिंग तैयार की थी, उसमें मात्र 3 लाख रुपया खर्च हुए जबकि 65 करोड़ रुपया सुकमा को दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, चाहे पुलिस की तरफ से भी हो चाहे अंदर वालों की तरफ से, दोनों पार्टों पिस रहे हैं। लोगों को विश्वास में लेना पड़ेगा, आप जब तक उनको विश्वास में नहीं लेंगे तो आप कोई भी जंग नहीं जीत पाएंगे, ये तय है। तो विश्वास और विकास दोनों को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी ये जो आप वर्तमान में जो दृश्य प्रदेश देख रहे हैं ये शांति में तब्दील हो सकती है।
तो सुना आपने कि यहाँ कहना है लोगों का कि जब तक के स्थानीय लोगों को यानी खास तौर से जो ग्रामीण इलाकों में जो रहने वाले लोग हैं उनको विश्वास में जब तक नहीं लेती सरकार और उन तक नहीं पहुंचती और उनका भरोसा नहीं जीतती, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। सलमान रावी, BBC सुकमा।
दिक्कतों का सामना झारखंड के पशु पालने वाले आदिवासी भी कर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध बूचड़ खानों पर कार्रवाई की तो उसी तर्ज पर झारखंड में भी कार्रवाई शुरू हो गई। इसे लेकर आदिवासियों के सामने कई तरह की मुश्किलें खड़ी हो गईं। क्या है उनकी परेशानियां, बता रहे हैं रांची से रवि प्रकाश।
अनगढ़ा इलाके के हरिलाल बेदिया इन दिनों परेशान हैं। वे इस प्रखंड के रांगामाटी बरवा टोली में रहते हैं। इनकी बेटी सोनामती ने 10वीं की परीक्षा दी है, इंटर में उसके नामांकन के लिए उन्हें पैसों की सख्त जरूरत है, लेकिन इनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। अगर बूचर खाने खुले होते तो वे पास के जोना बाजार में अपनी बकरी बेच आते। हरिलाल बेदिया ने BBC को बताया कि उन्हें एक बकरे के एवज में 10 से 15 हज़ार रुपये की आमदनी हो जाती। हरिलाल बेदिया ने कहा,
घर का खर्चा ही मतलब बकरी पाल के चला रहे थे, कभी कभी बकरी को जैसे मतलब खर्चा कम हो जाता तो बकरी को बिक्री करते हैं और मतलब खर्चा चलाते थे। मेरा 6 बच्चा है, उसमें से सब पढ़ाई लिखाई कर रहा है, तो उसमें हमको अभी बहुत परेशानी उठाना पड़ रहा है कि पैसा के चलते। हम तो अभी सोचे थे कि हम एक आध खसी को बेच देंगे तो हम लोग का कुछ राहत मिलेगा।
बूचर खानों की बंदी के बाद मुर्गों का बिकना भी बंद है। रांची गेतासुद मार्ग पर पोल्ट्री फार्म चलाने वाले बुधेश्वर बेदिया ने कहा कि अभी माहौल खराब है, मुर्गा बेचे तो फंस जाएंगे, इसलिए अपनी दुकान बंद कर किसी तरह घर का खर्चा चला रहे हैं।
तो कहाँ महीना में कितना कमाएगा, 2,000-3,000 तो अभी तो फिलहाल एकदम चौपट है।
एक महीने से कुछ भी बिक्री नहीं?
नहीं बिक्री है अभी, डर के मारे लानवे नहीं करते हैं, अभी कहीं फंस उस जाएंगे इसलिए।
किससे डर लगता है,
क्या करेंगे, पूरा माहौल खराब है इसलिए।
झारखंड की भाजपा गठबंधन सरकार में शामिल आजसू पार्टी के नेता व अनगढ़ा के पूर्व प्रखंड प्रमुख राजेंद्र शाही मुंडा ने कहा कि सरकार को बंद बुचर खानों को शीघ्र खुलवाने की पहल करनी चाहिए क्योंकि इससे आदिवासियों का जीवन प्रभावित हो रहा है। राजेंद्र शाही मुंडा ने कहा,
देखिए बूचड़खाना के जो बंदी की और उसमें निर्णय नहीं ले पाया है, उसमें गरीब किसान अभी मारे जा रहे हैं, न बाजार में नहीं बेच पा रहे हैं, तो उसका आर्थिक स्थिति बहुत थोड़ा नीचे है। और सरकार की सोच थी कि आर्थिक स्वावलंबी बनने के लिए बकरी पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन पर फोकस कर रही थी, और ये मॉडल पंचायत है, इसको मॉडल पंचायत के रूप में, आदिवासी मॉडल पंचायत के रूप में चिन्हित किया गया था, लेकिन इस पर रोक हो जाने से गरीब किसान जो अपना जीवोपार्जन करते थे उसमें थोड़ा सा बहुत मुसीबत में पड़ गए हैं।
दरअसल पशुपालन आदिवासियों का परंपरागत पेशा है। झारखंड के आदिवासी खेतीबाड़ी, मजदूरी व पशुपालन कर अपना जीवन चलाते हैं। उनके लिए खस्सी या बकरी ATM के समान है जिससे जब चाहे पैसा मिल सकता है, लेकिन झारखंड सरकार के निर्णय के बाद राज्य के सभी बूचड़खाने बंद कर दिए गए। राज्य में एक भी लाइसेंसी बूचड़खाना नहीं है, ऐसे में आदिवासियों की घरेलू अर्थव्यवस्था चरमरा कर रह गई है। सरकार को इसे गंभीरता से समझना होगा। रवि प्रकाश, BBC रांची।
श्रोताओं, जैसा आप जानते हैं कि इन दिनों भारत में एक बड़ी राजनीतिक बहस EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर हो रही है। इस बीच उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून की विकास नगर विधानसभा सीट की सभी EVM सील करने के आदेश जारी किए हैं। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं देहरादून से राजेश डोबरियाल।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून की विकासनगर विधानसभा सीट की सभी EVM सील कर जुडिशियल कस्टडी में रखने का आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने आदेश विकासनगर सीट से हारने वाले कांग्रेस प्रत्याशी नव प्रभात की याचिका पर दिए। कांग्रेस प्रत्याशी के वकील रविन्द्र सिंह बिष्ट के अनुसार हाईकोर्ट ने इस मामले में 6 लोगों को नोटिस जारी किया है।
हाईकोर्ट ने पहले तो मैटर को एडमिट किया है और रेस्पोंडेंट्स जो छह हैं, एक मुन्ना सिंह चौहान है जो जीते हुए कैंडिडेट हैं, इनके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और स्टेट इलेक्शन कमीशन है और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है और रिटर्निंग ऑफिसर है। इन सबको नोटिस जारी किया है और 6 वीक में रिप्लाई कॉल किया है।
इस निर्वाचन प्रक्रिया को चुनौती देने वाले विकासनगर से प्रत्याशी नवप्रभात कहते हैं कि संदेह इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि एक आदमी ने रिजल्ट घोषित होने से पहले ही लगभग सटीक भविष्यवाणी कर दी थी।
उन्होंने अपने फेसबुक पे 2 मार्च को रिजल्ट डाल दिया था। मुझे आश्चर्य हुआ कि मुझे जितने वोट मिले उसमें से 75 वोट का फर्क था। उन्होंने पूरी विलेज वाइज कैंडी डाली और ये जरा आश्चर्यजनक था कि हाउ कंपनी कैन प्रिडिक्ट की सब मतलब 76,000 वोट में से अगर 75 वोट का डिफरेंस वो कैलकुलेट कर सकते हैं तो परसेंटेज वाइज तो उनकी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ही नहीं है।
लेकिन विकास नगर से निर्वाचित बीजेपी प्रत्याशी मुन्ना सिंह चौहान का कहना है कि ये कांग्रेस की हताशा को दर्शाता है।
ये स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं कि पूरे प्रदेश में उनको पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया, देश में खारिज कर दिया गया। ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि जनता ने उनको वोट नहीं दिए। अब वो कभी कहते हैं कि साहब वो मशीन खा गए वोट, कभी कह रहे हैं फलानी गड़बड़ी हो गई है। तो ये इनकी फ्रस्ट्रेशन है। उनको यदि कांग्रेस पार्टी में भी थोड़ा सा भी नैतिक बल है, उनको अपनी चीजों को स्वीकार करना चाहिए एंड दे शुड ट्राई टू सेट देयर हाउस इन ऑर्डर।
उधर राज्य निर्वाचन आयोग को गुरुवार शाम तक हाईकोर्ट का नोटिस नहीं मिला। हालांकि राज्य के सहायक निर्वाचन आयुक्त मसूदास कहते हैं कि सामान्य निर्वाचन प्रक्रिया का हिस्सा है। ईवीएम पर मचे बवाल को देखते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर सिर्फ विकासनगर से हारे प्रत्याशी ही नहीं बल्कि देश भर की निगाहें रहेंगी क्योंकि ईवीएम पर आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि तमाम विपक्षी दल सवाल उठाते रहे हैं। राजेश डोबरियाल, BBC देहरादून।
BBC इंडिया बोल।
माओवादियों के एक और हमले में सुरक्षा बलों के 25 जवानों की मौत। नक्सली समस्या का समाधान क्या बंदूक है या बातचीत, यही है इस हफ्ते BBC इंडिया बोल का विषय। क्या है इस विषय पर आपके विचार? शनिवार 29 अप्रैल शाम 7:30 बजे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1800-102-7001 पर।
BBC इंडिया बोल।
इंडिया बोल के विषय की तो आपको जानकारी हो गई। अब जान लेते हैं कि दिल्ली से छपे अखबारों की सुर्खियां क्या कह रही हैं। दिलनवाज पाशा तैयार हैं अखबारों के साथ।
जी वात्सल्य, कल भारत के मशहूर अभिनेता और भाजपा सांसद विनोद खन्ना का देहांत हो गया और उनसे जुड़ी खबर आज लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। कहीं उनकी जवानी की खूबसूरत तस्वीरें हैं तो कुछ में उनकी फिल्मों के नाम लेकर बताया गया है कि दयावान नहीं रहे। इसके अलावा एक और खबर आज सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है, कल भारत प्रशासित कश्मीर में चरमपंथी हमले में भारत के 3 जवानों की मौत हो गई जिनमें एक कैप्टन भी थे। ये खबर सभी अखबारों में है। हिंदुस्तान लिखता है सैन्य शिविर पर हमला, 3 जवान शहीद। तो वहीं द हिंदू बताता है कि अल्ट्राज ने एक कैंप पर हमला किया है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना के जवानों की मौतों के मामले में बढ़ोतरी हुई है। 2016 में 88 सुरक्षा बलों की जान जम्मू कश्मीर में चली गई। और एक और खबर है, जम्मू कश्मीर में भारत पहली महिला बटालियन स्थापित करने पर विचार कर रहा है, ऐसा जो लड़कियां वहां पर पत्थरबाजी में शामिल हो रही हैं उससे निपटने के लिए
उन पर रोक लगाई जा सके।
जी, उसको रोका जा सके। एक और खबर आज है, पहली बार IIT के लिए जो भारत में परीक्षा होती है, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी छात्र ने उसमें 100% अंक हासिल किए हैं। कल्पित नाम के छात्र ने 360 में से 360 अंक हासिल किए हैं।
जी, ज्यादातर अखबारों ने इनके बारे में जिक्र किया है कि JEE मेन में पहली बार 100 में से 100% अंक।
जी बिल्कुल, और ये दलित छात्र हैं जो एक बहुत साधारण पृष्ठभूमि के परिवार से आते हैं। एक खबर द इंडियन एक्सप्रेस में है, केंद्र सरकार दिल्ली से 9 IAS अधिकारियों को उत्तर प्रदेश लखनऊ में तैनात कर रही है और अखबार कह रहा है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो काम कर रहे हैं उस पर नजर रखी जा सके।
जी बिल्कुल, नज़र रखने का काम ज़्यादा आजकल किया जा रहा है। और दिलनवाज, हम अपने श्रोताओं को यहाँ बता देना चाहेंगे, विनोद खन्ना का आपने जिक्र किया जिनका कल निधन हुआ, उनसे जुड़ी कई रिपोर्ट्स हमारी वेबसाइट पर है, तो श्रोता अगर उनको पढ़ना चाहें तो रुक कर सकते हैं bbchindi.com का। तो बहुत शुक्रिया दिलनवाज, और आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि वक्त मुट्ठी में बंद रेत की तरह होता है, कब फिसलता जाता है पता ही नहीं चलता। अब देखिए ना, देखते ही देखते अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। ट्रंप ने शुरुआती 100 दिनों में कितने वादे पूरे किए, हर कोई इसके आकलन में लगा है। बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय ने राष्ट्रपति ट्रंप के 100 दिन के कार्यकाल पर अलग ही अंदाज में नजर डाली है। सुनिए उनकी वाशिंगटन डायरी।
गर्मी के मौसम में मैं अगर अलाव की आग के आसपास होने वाली गपशप की बात करूं तो आप सर फिरा कहेंगे, लेकिन ट्रंप साहब के 100 दिन क्या पूरे होने को आए? अमरीका को 1933 की अलाव की आग वाली बातचीत यानी फायरसाइड चैट के नाम से मशहूर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के भाषणों की बड़ी याद आ रही है। रूजवेल्ट ने जब व्हाइट हाउस में पांव रखा तो अमेरिका भयंकर मंदी से जूझ रहा था। लोगों का बैंकों से भरोसा उठ चुका था और जैसी कतारें आपने नोटबंदी के समय देखी होंगी या भुगती होंगी, कुछ वैसी ही कतारें थीं पैसा निकालने वालों की। रूजवेल्ट ने कुर्सी संभालने के 2 दिनों के अंदर सभी बैंकों को बंद कर दिया। 5वें दिन कांग्रेस के साथ मिलकर इमरजेंसी बैंकिंग कानून पास किया और पहली रविवार को रात 10 बजे रेडियो पर राष्ट्र को संबोधित किया, जिसे 6 करोड़ लोगों ने सुना। उस समय के इतिहासकार कहते हैं कि उस भाषण ने एक तरह से जनता का विश्वास जीत लिया। बैंकों में लोग पैसा वापस जमा करने लगे और फिर रूजवेल्ट ने वैसे 30 और भाषण दिए जो फायरसाइड चैट के नाम से मशहूर हुए और सबको एक से बढ़कर एक टीआरपी मिली। और 100 दिनों के अंदर ही जो कामयाबियां उन्होंने हासिल की, कहते हैं तभी से हर राष्ट्रपति के पहले 100 दिन का लेखा जोखा हासिल करने की परंपरा चल पड़ी। चुनाव अभियान के दौरान ट्रंप साहब भी पहले दिन और पहले 100 दिन में ये कर दूंगा वो कर दूंगा वाले नारे देते थे, लेकिन जब 100 दिन पूरे होने को आए तो इस परंपरा को कोसने लगे। सही भी है, कहां तो साहब आते ही वॉशिंगटन को हिलाने की बात कर रहे थे, अब जैसे खुद ही हिले हुए हैं। व्हाइट हाउस में कौन कमरा कहाँ है ये भी नहीं पता चला था कि लाखों महिलाओं ने वॉशिंगटन में जमा होकर उनके खिलाफ ऐसी आवाज़ बुलंद की जो अमेरिका के लिए एक रिकॉर्ड था। किसी के पोस्टर में उनके छोटे हाथों पर टिप्पणी थी तो कोई उन्हें महिलाओं के शरीर से अपना हाथ दूर रखने की चेतावनी दे रहा था। लेकिन ट्रंप साहब को सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात पर आया कि कईयों ने कहा कि महिलाओं की भीड़ उनकी ताजपोशी के दिन की भीड़ से भी ज़्यादा थी। फिर उन्होंने लगाया 7 मुसलमान बहुल देशों से आने वालों पर प्रतिबंध, लेकिन बेदर्द अदालतों ने ट्रंप के अरमानों को लाल झंडी दिखा दी। और फिर तीखे होने लगे रूस के साथ उनके और उनकी टीम के संबंधों को लेकर सवाल। सबसे पहले धराशायी हुए उनके बेहद करीबी समझे जाने वाले उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल फ्लिन, और कुछ ही हफ्तों बाद FBI के डायरेक्टर ने कह दिया कि वो ट्रंप और रूस के संबंधों की जाँच कर रहे हैं। ओबामा केयर को उखाड़ फेंकने का वादा कर चुके थे, लेकिन ट्रंप को कांग्रेस में भी झटका ही लगा जब उनकी अपनी ही रिपब्लिकन पार्टी के सभी सांसदों का वोट भी नहीं मिल पाया उन्हें। मेक्सिको की सीमा पर दीवार बनाने और उसका पैसा मेक्सिको से वसूलने का ख्वाब भी फिलहाल हवा में ही हिचकोले खा रहा है। कभी ओबामा पर अपनी खींच उतारी, कभी अपनी ही खुफिया एजेंसियों की काबिलियत पर सवाल उठाए, तो कभी कांग्रेस को ही कोसा। अब गलती तो वॉशिंगटन की है, जब ट्रंप साहब अपने वादों को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो कोई उनकी चलने नहीं देता, और दूसरी तरफ 100 दिनों में क्या हासिल किया ये भी पूछता है। यही तो वजह है कि जब भी मौका मिलता है ट्रंप साहब व्हाइट हाउस छोड़कर अपने फ्लोरिडा वाले ऐशगाह में पहुंच जाते हैं। 100 दिन की ऐसी तैसी, अभी तो 4 साल पड़े हैं। ब्रजेश उपाध्याय, BBC न्यूज, वॉशिंगटन।
काफी टाइम है अभी ट्रंप के पास। इस डायरी पर आपकी राय का हमें रहेगा इंतजार। और अब IPL अपडेट। विराट कोहली, AB डिविलियर्स, क्रिस गेल जैसे दिग्गजों से सजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम कल एक बार फिर पस्त हो गई। RCB को गुजरात लॉयंस ने 7 विकेट से हरा दिया। गुजरात की जीत के हीरो रहे एरन फिंच, जिन्होंने सिर्फ 34 गेंद में 72 रन बना दिए, और विराट कोहली की टीम के लिए आगे का रास्ता बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। वक्त आपसे विदा लेने का है, लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर दिलनवाज पाशा से।
अमरीकी रक्षा विभाग राष्ट्रपति ट्रंप के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जनरल माइकल फ्लिन के रूस से पैसे लेने के आरोपों की जांच कर रहा है। मैसेडोनिया की पुलिस ने संसद के अंदर बिगड़े माहौल को शांत करने के लिए स्टन ग्रेनेडों का इस्तेमाल किया है। अल्बानियाई मूल के सांसद को सदन का अध्यक्ष चुने जाने के बाद मतदान के बाद संसद के भीतर ही झड़पें हो गई थीं। जर्मनी की संसद के निचले सदन ने सार्वजनिक कर्मचारियों के ड्यूटी पर बुर्का पहनकर काम करने पर रोक लगाने के समर्थन में मतदान किया है। स्वास्थ्य सेवाएं देने वाली राहत संस्था मेडिसिन सान फ्रंटियर यानी MSF ने दक्षिणी सूडान के संघर्ष में शामिल सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने और जरूरी सेवाओं तक पहुंच मुहैया कराने के लिए कहा है। BBC समाचार।
नमस्कार भारत में इतना ही। स्टूडियो का संचालन किया दीपक जसरोटिया ने। आपसे अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। बदलती खबरों के लिए तब तक आपके साथ है हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com। वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।